मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज 4 अगस्त 2014 है और सबसे बड़ी बात ये कि सप्ताह का पहला दिन। आप समझ गए होंगे कि मैं सप्ताह के पहले दिन को सबसे बड़ी बात के रूप में क्यों परिभाषित कर रहा हूं, वह इसलिए कि अब ऐसा कोई बहाना नहीं चलना चाहिए, कोई ऐसा विचार आपके दिमाग में नहीं उठना चाहिए जो आपके दिन की ऊर्जा को किसी भी मायने में कम करने वाला हो। कल आप पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर चुके हैं, इतनी ऊर्जा कि आने वाले 6 दिनों तक बिना किसी हिचक के, बिना उदासी और किसी निराशा के अपने काम में पूरी तरह जुड़ जाएं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट्स क्या होंगे। मित्रों, एक छोटी सी खबर यह है कि आप लोगों ने देखा होगा, नॉलेज सेंटर पर 2 दिन पहले योजना पत्रिका के एक एक लेख डाले गए हैं। एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। इंग्लिश में उस लेख का नाम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये पीप इन द पास्ट एंड लुक अहेड, जगदीप चोकर जी का, और ठीक इसी का हिंदी अनुवाद भी डाला गया है। उसका शीर्षक है चुनाव सुधार, अतीत और भविष्य। इसे आप जरूर देखेंगे। उसमें खासकर मैंने उस पोर्शन को मार्क कर दिया है जो विशेषकर पिछले 2-3 सालों में जो रिफॉर्म इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के तहत हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार ने उसके लिए कुछ किया है, सरकार कोई बिल लेकर के आई हो, अधिनियम पारित किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर जो डिसीजंस आते रहे हैं या चुनाव आयोग ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं, वो चुनाव सुधार में किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन रहे हैं, उस हिस्से को मैंने स्पेशली मार्क किया हुआ है। उसे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि वो एक लेटेस्ट हिस्सा है चुनाव सुधार का, और चूंकि कंटेम्प्रेरी नॉलेज पर सिविल सर्विस में बहुत जोर होता है, इसीलिए आपको यह पढ़ना चाहिए। और यह बहुत अच्छा पीस है, मतलब आप देखेंगे कि इसके लिखने का ढंग, कंपोजिशन, कंटेंट सब के सब बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छे हैं। तो योजना पत्रिका के लेख डाले गए हैं, आप इसे जरूर देखें और अपने पास हिफाजत से रखें भी, क्योंकि इस साल चुनाव हुए हैं और 5 साल के लिए चुनाव हुए हैं, तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि चुनाव सुधार या चुनाव से संबंधित कोई भी इश्यू आने वाले कुछ सालों तक सिविल सर्विस परीक्षा में बहुत मायने रखेंगे। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कल की एक छोटी सी घटना को, जो थोड़ी सी दुर्भाग्यजनक ही घटना मैं उसे कहूंगा, कि हमारे घर के सामने एक अंकल जी रहते थे, लच्छानी जी, जिन्हें हम लोग अंकल जी कहते थे। परसों रात में वो नहीं रहे और कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा दोस्तों। इसमें आप देखिए कि जीवन के सूत्र क्या निकलते हैं और जीवन क्या होता है। वो लगभग 80-82 साल के थे। 1 साल पहले ही उनकी पत्नी नहीं रही थी, और जब से उनकी पत्नी नहीं रही, लच्छानी जी लगातार डाउन होते चले गए। जब भी हम लोगों से मिलते थे, वो हमेशा अपनी पत्नी को याद करते थे और अफसोस कहते थे कि वो मुझे बिना बताए चली गई, मुझसे पहले चली गई, मुझे छोड़कर चली गई, इस तरह का अफसोस वो करते थे। खराब लगता था सुनकर के, लेकिन जब मैं ये सोचता था कि देखिए अपनी पत्नी का अभाव इन्हें कितना खल रहा है, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा अच्छा भी लगता था कि अपनी पत्नी के प्रति इनके मन में इतना प्रेम था। हम लोगों को मित्रों बहुत आश्चर्य होता था कि बहुत पतले दुबले, हाइट उनकी अच्छी थी, 6 फीट से ऊपर ही होगी, 6'1" के करीब उनकी हाइट होगी, पतले दुबले से। और अपने जीवन के अंतिम दिनों से 1 महीने पहले तक हम लोगों ने उन्हें उनकी कार ड्राइव करते हुए देखा है, वो अपनी कार खुद ड्राइव करते थे। जब उनकी पत्नी थी तो उनकी पत्नी सामने की सीट पर बैठती थी, वो कार ड्राइव करते थे। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि उनकी पत्नी को कुछ विशेष जूस होते थे, जो रस होता था वो पसंद आता था, और कुछ एक विशेष किस्म की आइसक्रीम पसंद आती थी, और उनको जूस पिलाने के लिए और आइसक्रीम खिलाने के लिए वो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जो जगह थी वहां जाया करते थे। मैं समझता हूं कि शायद आज के यंग कपल भी इतनी तकलीफ न उठाएं, लेकिन वो जाते थे। इससे पता लगता था कि उनमें कितना कमिटमेंट है और जीवन जीने का उनमें जो अंदाज था। दोस्तों, मैं सुबह जब वॉक के लिए जाता था पार्क में तो अक्सर उनसे मुलाकात होती थी, नमस्ते होती थी। और मालूम है कि वो किस रूप में होते थे? पॉकेट में अपना छोटा सा वो एक इंस्ट्रूमेंट रखते थे, कान में वो ईयरफोन लगा लेते थे और गाने सुनते हुए चलते थे, घूमते थे। गानों के बेहद शौकीन और पुराने गाने बजते रहते थे, बल्कि हम लोग मन ही मन मुस्कुराते भी थे कि यार देखिए इस उम्र में भी इनको बड़े रोमांटिक और पुराने गाने पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, ये एक पार्ट है जो हमारी एक वैल्यू सिस्टम इस चीज के लिए इस तरीके से सोचती है। लेकिन जब मैं इसे ही दूसरे रूप में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि सच में जीवन के प्रति इनमें कितना जबरदस्त उमंग था। 80 साल की उम्र में खुद कार ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर, सो कॉल्ड लॉन्ग ड्राइव पर अपनी पत्नी को ले जा रहे हैं, वो भी आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम खिलाने के लिए, और गाने सुन रहे हैं। म्यूजिक नहीं, गाने, वो पुराने गाने, रोमांटिक गाने। और जब भी उनसे बात कीजिए तो बिल्कुल इस तरह से बात करते थे जैसे कि वो बिल्कुल यंग हो। मुझे वो दिन याद है दोस्तों कि पिछले साल अक्टूबर में कुछ प्रॉब्लम के कारण जब मुझे डॉक्टर्स ने 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दी थी तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तो ये उस जगह को ढूंढते हुए 1-1.5 घंटे ढूंढने के बाद वो वहां देखने पहुंचे और हमारी कॉलोनी में 450 लगभग डुप्लेक्स बंगलो हैं और उसमें से अकेले ये व्यक्ति थे जो देखने पहुंचे और ढूंढते हुए पहुंचे क्योंकि नाम में कुछ कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन वो माने नहीं, हार नहीं मानी उन्होंने, पहुंचकर माने। इस तरह के स्नेही व्यक्ति थे दोस्तों। बट नेचुरली गवर्नमेंट सर्विस में थे वो, डीएसपी से रिटायर हुए। उनको 21 साल का वक्त हो चुका था, 23 साल का वक्त हो चुका था। और मैं आश्चर्यचकित रह गया जब हम अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंचे। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि कितनी भीड़ है, कार खड़ी है, मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं और लोगों का हुजूम वहां उमड़ा हुआ है। मुझे देखकर यह सोचने को बाध्य होना पड़ा मुझे ये सब देखकर कि ये भीड़ यहां क्यों है, इतनी भीड़ क्यों है। ये तो व्यक्ति 23 साल पहले रिटायर हो गए थे, कहीं आना जाना बहुत ज्यादा नहीं रह गया था, फिर ये भीड़ किस लिए है? दोस्तों, वो मालूम है वो भीड़ किस लिए थी? इसलिए कि वो मोहल्ले भर में घूमते रहते थे, लोगों से नमस्ते करते थे, लोगों से बड़े प्रेम से बातचीत करते थे। और आप यही कल्पना कर लीजिए, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो मुझे देखने के लिए वो वहां पहुंच गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सही मायने में ये कितने स्नेहिल व्यक्ति थे, संबंधों को निभाने वाले, संबंधों को जीने वाले, संबंधों को बढ़ाने वाले। और सच में उनके निधन पर मैंने, हमारी कॉलोनी के भी बहुत से लोग थे, ज्यादातर लोग नो डाउट कि हमारी अपनी कॉलोनी के लोग थे, तो मैंने यही कहा कि आज हमारे कॉलोनी का संगीत और हमारी कॉलोनी का जीवंत व्यक्ति शांत हो गया है, संगीत शांत हो गया है। दोस्तों, सच में हम लोगों को उनकी याद आएगी, बहुत याद आएगी। कॉलोनी में सुबह सुबह मेरी उनसे नमस्ते होती थी, आज कल भी नमस्ते नहीं हुई, आज भी नमस्ते नहीं हुई, और मैं जानता हूं कि अब कभी उनसे नमस्ते नहीं होगी। दोस्तों, लोगों की भीड़ क्यों जाती है? लोग आपका क्यों सम्मान करेंगे? लोग आपको क्यों प्यार करेंगे? बहुत सिंपल सा है दोस्तों, क्योंकि आप उनका सम्मान करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको प्यार करते हैं। मृत्यु के बाद तो कभी मिलना नहीं, कोई कहने वाला नहीं, अगर नहीं भी जाते वो शमशान घाट पर तो क्या हो जाता? कुछ नहीं हो जाता। लेकिन इसके बाद भी लोग जाते हैं, उनका जाना जरूरी नहीं है कि वो रिश्तेदार है, लेकिन सोचिए कि फिर भी वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि केवल लच्छानी जी की ही मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि हम सब भी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मर गए हैं, हमारे अंदर से कुछ खाली हो गया है, एक रिक्त स्थान बन गया है। ये रिक्त स्थान कैसे बना है? क्योंकि उन्होंने पहले स्थान वहां बनाया था। अगर कोई स्थान बनाएगा ही नहीं तो रिक्त होने का सवाल उठेगा ही कैसे? अगर एक कमरा शुरू से खाली है तो कोई नहीं कहेगा कि कमरा खाली हो गया, आप यही कहेंगे कि कमरा खाली था। कमरा तो खाली तब होगा जब पहले से उसमें कुछ भरा हुआ होगा। दोस्तों, दूसरों को अपना बना लेना, दूसरों में शामिल हो जाना दूसरों की जिंदगी में बहुत बड़ी बात होती है। और मित्रों, याद रखिएगा, आप सब सिविल सर्वेंट बनने के लिए लगे हुए हैं, बनेंगे भी, लेकिन कभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपकी जो ये सफलता है और आपके जो अधिकार हैं ये आपको दूसरे के दिलों में स्थान दिला देंगे। नहीं, दूसरे के दिमाग में सम्मानजनक स्थान तो दिला सकते हैं, लेकिन दिलों में स्थान आप तब पाएंगे जब आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी सोच उन सबके प्रति बहुत अधिक मानवतावादी होगी, कल्याणकारी होगी, प्रेमपूर्ण होगा, सहृदयतापूर्ण होगा, सम्मानजनक होगा, समानतापूर्ण होगा। तब जाकर के ये सम्मान आप हासिल कर सकेंगे और लोगों के दिलों पर राज कर सकेंगे। मित्रों, मैंने वहां जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी है और आज मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से एक बार फिर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। मित्रों, अब मैं आता हूं कल के रेडियो समाचार पर। आप सबने रेडियो समाचार सुना होगा, आपने देखा है कि 15 मिनट के समाचार में लगभग 5 मिनट का वक्त केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेपाल यात्रा को दिया गया है। और निश्चित रूप से चूंकि इतवार को और भी कुछ दूसरी बड़ी बातें नहीं होती, इसलिए भी और इससे भी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री की है नेपाल यात्रा बहुत ही बड़ी माइलस्टोन है, बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आपने देखा कि किस तरह से जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, वैसे ही उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत बनाने की अपनी नीति की एक तरह से अप्रत्यक्ष घोषणा कर दी थी। सार्क देशों के नेताओं को बुलाया गया था। जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस ऑडियो गाइडेंस को शुरू से सुन रहे हैं, मैं समझता हूं आपको ऐसा इवेल्युएट करना भी चाहिए अपने को ना, लगातार मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं कि अपने को आप इवेल्युएट करते रहिए, अपना मूल्यांकन करते रहिए, पुनर्मूल्यांकन करते रहिए कि जो शुरू से सुन रहे हैं क्या उन्हें प्रधानमंत्री की इस नेपाल यात्रा में कोई नया कंटेंट मिल रहा है, और प्रधानमंत्री की केवल नेपाल यात्रा के ही विश्लेषण करने को कह दिया जाए तो क्या वो नहीं कर लेंगे। इससे भी व्यापक रूप में जाकर के अगर उनसे केवल ये प्रश्न कर दिया जाए कि नई सरकार के विदेश नीति में आए हुए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए, चिन्हित कीजिए, तो जो ऑडियो गाइडेंस को शुरू से सुन रहे हैं क्या उन्हें दिक्कत होगी, क्या वो तुरंत नहीं कह लेंगे कि सार्क देशों को पहला माइलस्टोन, सार्क देश के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाना, द सेकेंड जो है प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा, तीसरी प्रधानमंत्री का ब्रिक्स में बड़े बड़े नेताओं से मिलना, और चौथा बड़ा माइलस्टोन प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा। और नो डाउट कि इस बीच में ब्रिटेन से विदेश मंत्री आए, और इस बीच में अमेरिका से भी विदेश मंत्री आए और होकर के गए, और हमारे प्रधानमंत्री की ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। ये उसके अंदर के छोटे छोटे पड़ाव हैं, कलर्स जिससे आप भरेंगे, छोटी छोटी लाइनें हैं। दोस्तों, मैं ये बात विशेषकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी को मुझे लगता है कि केवल इसी पैटर्न पर ही किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत और नेपाल के बीच में क्या संधि हुई बताइए, हो सकता है स्टेट सिविल सर्विस में पूछ लिया जाए, लेकिन जो सिविल सर्विस है, जो आईएएस का जो एग्जाम है, इसमें ये इस तरह से स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसमें हमेशा उसको एक ट्विस्ट कर देंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक मोड़ ला देंगे, एक पेंच खड़ा कर देंगे, एक उलझाव ला देंगे। लेकिन याद रखिए, उलझाव वो ऊपर से तो दिखाई देता है, लेकिन यदि आपके सब्जेक्ट पर पकड़ है तो फिर वहां कुछ उलझाव नहीं है, आप बड़े आराम से उसमें से निकाल लेंगे। आफ्टरऑल भूल भुलैया से भी रास्ते निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, परेशानी तो हमारी है कि हम उसे नहीं जानते। तो इस लिहाज से दोस्तों, प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप बिल्कुल वाच करते रहिए, न्यूज को सुनिए और उसे ध्यान से सुनिए, केवल ऐसे नहीं कि सुन लिया और खत्म हो गई बात आप, क्योंकि जो न्यूज में जो बातें कही जाती है, खासकर आकाशवाणी न्यूज में, वो वे बातें होती हैं जिन पर सरकार जोर देना चाहती है। सरकार चाहती है कि इसको हमारे देश के नागरिक जाने, बाकी तो ढेर सारी चीजें होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दो तीन चार चीजें ही होती हैं, लेकिन जो दो चार इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आकाशवाणी न्यूज का हिस्सा बनती है या डीडी न्यूज का हिस्सा बनती है। अब आप देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट थी। एक तो कहा कि नेपाल को $1 अरब देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने। ये जो पैसा है कहां लगेगा? ऊर्जा में लगेगा, आधारभूत संरचना में लगेगा, स्कॉलरशिप देने में खर्च होगा। ये न्यूज का हिस्सा था, मैं न्यूज का हिस्सा बता रहा हूं। इसके बाद दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आई थी, जो यूं ही अनदेखी कर देने लायक नहीं है, वो है कि प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि हम आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा सर, और नेपाल की सार्वभौमिकता को उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब देखिए, सिंपल सा ये है कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि जितना गंगा और हिमालय का संबंध जितना पुराना है, उसी तरह से भारत और नेपाल के संबंध हैं। नेपाल एक छोटा सा देश है और भारत नो डाउट उसकी तुलना में कई गुना बड़ा देश है। तो खासकर छोटे देशों के मन में हमेशा ये आशंका रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो बड़े देश हैं वो हमको एक तरह से एक फ्री कॉलोनियल की तरह रूल करे, उपनिवेश न समझ ले और हमारे हर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, ऐसा करो वैसा करो, ये नीति बनाओ फलाना करो। ये डर एक मन में बना रहता है, तो उनके मन में ये बात आई ही नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री ने साफ साफ कर दिया। और आप देखते हैं कि हालांकि ये न्यूज में नहीं था, लेकिन अखबारों में आप पढ़ेंगे कि 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी, जो मित्रता की संधि थी, उसको भी भारत ने कहा कि हम रिन्यू करने को तैयार हैं। अब आप थोड़ा सा जाकर के देखिएगा कि ये संधि क्या है। डेफिनेटली उस संधि में जो भी स्थिति होगी, लेकिन अब चूंकि नेपाल की जो बैकग्राउंड है, 2000 मैं समझता हूं कि शायद 2006 से पहले नेपाल में राजतंत्र था, राजा हुआ करता था, महाराज हुआ करते थे। 2006 में वहां वो राजशाही खत्म हुआ। राजशाही खत्म होने के बाद फिर वहां डेमोक्रेसी के लिए शुरुआत हुई और काफी वहां अंदरूनी हलचलें होती रहीं और 2009 में माओवादियों की सरकार बनी। और जब 2009 में माओवादियों की सरकार बन गई तो नेपाल को, ये आप बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इससे पहले नेपाल ने अपने आप को सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ था, अब वो एक सेक्युलर स्टेट है। जैसे कि अभी आपने न्यूज में सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने संविधान सभा में भाषण दिया है, तो संविधान सभा का मतलब ये हुआ कि अब नेपाल अपने संविधान का निर्माण कर रही है, यानी संविधान बना रही, जैसे हमने भी यही किया था। हमारा भी संविधान सभा गठित हुई थी और इसके बाद संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो बैठते थे, डिस्कशन होता था, इश्यूज लाए जाते थे, फिर उनकी ड्राफ्टिंग होती थी, फिर उन पर बातचीत होती थी, फिर मतदान होता था और इस तरह से संविधान सभा ने संविधान हमारा बनाया। नेपाल अब उस तरह से अब कर रहा है, क्योंकि पहले राजतंत्र था तो राजतंत्र में एज सच ऐसा कुछ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता नहीं है, राजा की अपनी इच्छा ही या परंपराएं या जो ग्रंथ हैं वो सब संविधान का काम करते हैं। तो अब वो बन रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको बड़ा वेलकम भी किया है कि वहां संविधान, नेपाल अपना संविधान बना रहा है, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होंगी तो निश्चित रूप से इससे हमारे संबंधों को बेहतर करने में सहायता मिलती है और साथ ही साथ जो दूसरी तरह की जो इंसर्जेंसीज और फलाने फलाने जो संकट होते रहते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, घुसपैठ हो रहे हैं, इन सब चीजों पर भी नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि सेना फिर वहां इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। पाकिस्तान के साथ सच पूछे तो भारत की यही दिक्कत है कि वहां हालांकि है, ठीक है, लोकतंत्र है, बीच में वहां सैन्य तंत्र भी रहा है, सैनिक प्रधान शासन रहा है, लेकिन वहां अभी भी गवर्नमेंट भले ही चुनी हुई हो लेकिन जो डोमिनेट करती, जो डोमिनेंट पावर जो है, जो सब शक्ति जो इनफैक्ट जो जिसके हाथ में है वो सेना ही है, तो उसको उन्होंने वेलकम किया। तो ये तो न्यूज के हिस्से थे जो मैंने दो तीन इंपॉर्टेंट आपको बात बताई। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स आज अखबारों में काफी कुछ आया है और कल अखबारों में और आएगा। आप देखेंगे कि अभी तीन चार दिन तक अखबारों में चीजें आती रहेंगी नेपाल के संबंधों को लेकर के, क्या क्या हुआ इस पर डिटेल्स आएंगी, क्या और होना चाहिए था उस पर डिटेल्स आएंगी। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, भारत और नेपाल के संबंधों को वाच करना है। इसमें आज हरी भूमि में एक एडिटोरियल जो कमेंट है वो मैं समझता हूं कि नेपाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में एक अच्छा कमेंट है। ये मैं आज के नॉलेज सेंटर में डाल रहा हूं। इसमें इन्होंने कुछ अच्छे बैकग्राउंड दिए हुए, जैसे उन्होंने एक बात बताया कि जो भारत और नेपाल की जो सीमा है वो लगभग 1850 किलोमीटर है, और जो ओपन है खुली हुई सीमा है, मतलब उसमें ऐसा कोई नहीं कि हिमालय पर्वत जैसा कुछ खड़ा हो या कोई बहुत बीहड़ वो हो जिसको पार करना मुश्किल हो, बिल्कुल ओपन बाउंड्री है। आपको चाहिए कि आप नेपाल को बड़े इत्मीनान से मैप पर लोकेट करें कि नेपाल कहां है। आपको ये करना ही चाहिए, ये केवल सुनने की बात नहीं है। आप जैसे ही नेपाल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से बिल्कुल जैसे दूज का चांद होता है, इस तरह से नेपाल भारत के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। और फिर आप बड़े इत्मीनान से देखिए कि किन किन राज्यों की सीमा को वो टच कर रहा है। आप देखेंगे कि सबसे पहले वो उत्तराखंड को कर रहा है, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश को कर रहा है, इसके बाद फिर वो बिहार को कर रहा है, इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का टच कर रहा है, इसके बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा सिक्किम को टच कर रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को, फिर इसके बाद उत्तराखंड को, फिर बिहार को, फिर सिक्किम को, और सबसे कम हिस्सा वेस्ट बंगाल को। तो इस तरह से पांच राज्यों को स्पर्श करता है। तो जो हमारी सीमा से लगे हुए देश होंगे तो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे आप समझ सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर जो फेस कर रहा है खासकर नेपाल के साथ, वो है दोस्तों चीन। क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट शासन है, और अभी मैंने कहा कि वहां माओवादियों की सरकार बनने के बाद इसको धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया, वहां भी एक कम्युनिस्टों का काफी आंदोलन चलता है, काफी प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में चीन का प्रभुत्व तो लगातार नेपाल पर बढ़ता जा रहा है, और नेपाल इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहा है। पिछले 10 सालों में सोचिए कि चीन और नेपाल के बीच में 12 उच्च स्तरीय वार्ताएं हुई हैं, और भारत के 17 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं। सोच करके देखिए, हालांकि अटल बिहारी जी गए, वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, लेकिन वो दक्षे सम्मेलन में गए थे, एक्सक्लूसिव नहीं गए थे। तो महत्व तो एक्सक्लूसिव जाने का है। तो चूंकि चीन वहां चीन नेपाल के साथ अपने बहुत मजबूत संबंध बना रहा है, और वहां की सीमा 1850 किलोमीटर है, दोनों में कम्युनिस्टों का प्रभुत्व होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो नेपाल के साथ अपने संबंध को बहुत ठोस बनाए। तो ये एक डिप्लोमेटिक एंगल है कि भारत के लिए क्यों जरूरी है, राइट? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है वो एक बात है, लेकिन खासकर डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीन के साथ कह लीजिए नेपाल के संबंधों को देखते हुए भारत नेपाल के संबंधों का मजबूत होना बहुत मायने रखता है। तो मित्रों, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा आइटम दैनिक भास्कर में न्यूज आइटम छपा है, ये भी मैं डाल रहा हूं। इसमें पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, जैसे बिजली के क्षेत्र में क्या सहयोग हो सकता है भारत नेपाल के बीच में, आर्थिक मदद क्या हो सकती है, आंतरिक विकास में क्या हो सकते हैं, हमारे आपसी रिश्ते कैसे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, फिर चीन क्या क्या कर रहा है, मतलब दो बिल्कुल अलग दिए हुए, भारत के नेपाल के साथ संबंध और चीन के नेपाल के साथ संबंध। तो पॉइंट वाइज बहुत खूबसूरत तरीके से दिया हुआ है, ये भी मैं नॉलेज सेंटर में डाल रहा हूं, आप इसे भी जरूर देखेंगे दोस्तों। इसी पर फिर एक छोटा सा एडिटोरियल कमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ये बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने बस एक थोड़ा सा सतर्क किया है अभी की सरकार की विदेश नीति को, कि आप देख रहे हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हम संबंध अच्छे करने में लगे हुए हैं, और डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए, लेकिन इसमें उन्होंने सतर्क किया कि कहीं ऐसा न हो कि इनके साथ संबंध अच्छे हम अपने वेस्ट की कीमत पर करने लगे, मतलब पश्चिम के जो बहुत विकसित राष्ट्र हैं उनसे हमारे संबंध गड़बड़ होने लगे, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट। ये अमेरिका जैसे देशों के पास है या यूरोपीय समुदाय जैसे देशों के साथ है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि उनको अपनी भारत सरकार को अपनी नीति को बहुत बैलेंस लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि खासकर अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर भारत ने साइन नहीं किए हैं, जिस पर हम लोग काफी बात कर चुके हैं, उसको लेकर के अमेरिका भी नाराज है, और टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय की स्तर पर इस मायने में थोड़ी सी खराब हुई है कि भारत विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने में एक तरह से बाधा बन रहा है। तो ऐसे में भारत को बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो ये भी नॉलेज सेंटर में डाल रहा हूं दोस्तों। देखिए बाकी तो खबरें जो थी वो बहुत छोटी छोटी खबरें थी। आपने कोसी नदी की खबर पढ़ी कि किस तरह से भारत बिहार और नेपाल की सीमा पर जो बांध था उसमें कुछ पानी वगैरह भरने के कारण वो पानी छोड़ा है, तो कोसी नदी में एक तरीके से बाढ़ की स्थिति आने पैदा हो गई है। तो एक जो कोसी नदी है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि वो नेपाल में कहां से चलते हुए बिहार में कैसे पहुंचती है, कहां से बहती है। एक मौका है, आप दो मिनट में देख लेंगे नक्शे में और कोसी नदी के बारे में आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। ये एक जनरल नॉलेज का हिस्सा हो, मतलब अच्छा हिस्सा है मैं समझता हूं एक ठोस प्रिपरेशन के लिए। फिर आप उसमें ये भी देखेंगे कि आपदा प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, लोगों को पहले से खाली कराया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, तो वो एक जो कैलेमिटी नेचुरल कैलेमिटी पर जो एक विपदा प्रबंधन होता है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक खबर थी राष्ट्रमंडल देशों को लेकर के, जो बड़ा राष्ट्रमंडल में जो खेल हुए हैं उनको लेकर के, वो दुर्भाग्यजनक खबर है लेकिन आज के अखबार में आपने पढ़ा है कि राष्ट्रमंडल के खेल समाप्त हो गए हैं और भारत को उसमें पांचवां स्थान मिला है। ये आज की खबर जो होगी रात की उसमें ये चीजें शामिल होंगी। एक जो खबर दोस्तों छोटी सी तो है लेकिन वो गैर महत्वपूर्ण नहीं है, वो है एक खबर कि पंजाब और हरियाणा में अभी तक जो मानसून की बारिश हुई है वो 50% से कम हुई, अपने एवरेज में 50% से कम हुई है। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात नहीं, मतलब एक दुखद बात है। अगर आप इसके रियलिटी को नहीं समझेंगे तो आप देखेंगे कि एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगा। 50% से कम बारिश होने का मतलब है बिल्कुल अकाल जैसी स्थिति होने, अगर देश में 50% से कम बारिश हो तो बिल्कुल अकाल घोषित हो जाएगा। लेकिन चूंकि पंजाब और हरियाणा की बात है तो याद रखिए वहां अकाल जैसी स्थिति घोषित नहीं होगी, क्योंकि एक तो वहां सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं तो काफी कुछ सिंचाई से उसकी भरपाई हो जाएगी। दूसरा, पंजाब और हरियाणा में ठीक है धान की फसल को तो नुकसान पहुंचेगा, धान और मक्के की फसल को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन वहां जो मुख्य है वो रबी की फसल है, जो गेहूं की फसल हरियाणा और पंजाब का जो मुख्य है वो गेहूं है, तो वो सिंचाई पर आधारित है, उसका मानसून से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी बहुत कुछ जो भरपाई है वो रबी फसल से हो जाएगी। तो जब आप इस फैक्ट को जानेंगे तब इससे रिलेटेड एनालिसिस आपकी सही हो सकेगी। तो मुझे लगा कि मुझे इसकी भी एनालिसिस आपको बतानी चाहिए। तो दोस्तों न्यूज में इतनी ही बातें, अब मैं आता हूं अखबारों पर। अखबारों में दोस्तों ज्यादा पढ़ने को कुछ नहीं मिला है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मैंने बताया कि जिस पर साइन भारत ने नहीं किया है उसको लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स ने कमेंट किया और भारत के इस कदम को उसने बिल्कुल सही ठहराया है कि भारत को सब्सिडी वाली बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उसका जो बेस ईयर है वो 1986-88 है, जो बिल्कुल भारत के बिल्कुल विरोध में है, इसमें भारत के लोगों के हित के विरोध में है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों एक आर्टिकल है दैनिक जागरण का, गांव के विकास का मंत्र। ये बहुत अच्छा आर्टिकल तो नहीं है, मैं कहूंगा कि आप इसको बहुत अपने पास रखें, लेकिन इसमें खासकर जो मुझे थोड़ी सी नई चीज लगी वो कुल मिलाकर कि ये कि जो सोशल कॉरपोरेट रिस्पांसिबिलिटी की जो हम बात करते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड है कि कंपनी भी अपने सामाजिक दायित्व तो निभाएं, उसमें इन्होंने एक आइडिया ये दिया है कि कंपनियों को दो बातें नई कही है। एक तो कंपनियां जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी में जो काम करती हैं उनकी हर साल समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जो भी मर्जी हो वो करें, हालांकि लिस्ट दी हुई कि आप ये काम करेंगे तो वो अपने ढंग से चुनते हैं, तो इसकी सालाना समीक्षा होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए अब ये नियम जैसा होना चाहिए कि वो अपने गांव गोद में ले ले, पिछड़े हुए गांव को गोद में ले और उसकी गांव की सारी रिस्पांसिबिलिटी, उसके विकास की पूरी रिस्पांसिबिलिटी उन कंपनी के ऊपर हो, तो इससे हमारे देश के गांवों का जबरदस्त विकास होगा और जल्दी विकास होगा, क्योंकि उनका यही मानना है कि गांव का, भारत के गांव अभी तक बहुत बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा आइडिया है, खासकर डोनेशन की बात को लेकर के बहुत पहले मैंने करीब 4-1 साल पहले जनसत्ता में बहुत बड़ा लेख लिखा था, उसमें मैंने भी डोनेशन के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए यही कहा था कि अगर कंपनियों को या किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी धनराशि डोनेट करनी है तो बेहतर होगा कि वो गांव को गोद में लें और उसे पूरी तरह से विकसित करें। तो ये भी आर्टिकल मैं नॉलेज सेंटर में डाल रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। तो एक पॉइंट है, एक दो पॉइंट चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। मित्रों अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। दो दिन के ईमेल हैं जो संडे को लिखे गए और जो सैटरडे को लिखे गए। तो सबसे पहले तो मैं उन सबको धन्यवाद दे दूं जिन्होंने में अपने इस ऑडियो गाइडेंस के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उसमें है प्रसाद ढाके, अमित नायक, कन्नौज से आशुतोष दुबे, सूरज तलरेजा, चंद्रदीप गांधी हजारीबाग से, नमन कुमार रोहिला सूरजपुर से, अमरजीत नागर दिल्ली से, भरत कुमार भिवानी से, गौरव बाबू शाहजहानपुर से, अंजलि सेलवानी सिवनी से, करुणेश तिवारी अभय पांडे कोंच से, अमलकांत जमहारा से तथा विवेक मिश्रा रायबरेली से। तो आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों को ऑडियो गाइडेंस पसंद आता है। बस मेरी एक बात जरूर ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसे दूसरों को भी बताने की कोशिश करें ताकि उन तक भी बात पहुंच सके। अगला मेल है सुनीता पाटीदार का है रतलाम से। इन्होंने कहा है कि ये अभी क्लासेस के लिए इन्होंने बात पूछी है कि ये अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं, 2016 में ग्रेजुएशन होगा तो इनको क्लासेस जो एकेडमी की होनी है ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। सुनीता जी देखिए इसमें दो बहुत स्पष्ट रूप से है। नंबर एक, ट्वेल्थ के बाद इसको कोई भी क्लास इस क्लास को कर सकता है क्योंकि इस क्लास में हाईफाई बातें नहीं होंगी, बेसिक्स बताई जाएंगी। अगर अभी कोई कर लेता है तो डेफिनेटली वो बेसिक्स पर उसकी पकड़ हो जाएगी और ग्रेजुएशन में भी इससे मदद मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि आप 2016 में ग्रेजुएशन करेंगे, अभी आपके पास काफी वक्त है, तो अगर आपकी प्रायोरिटी में ग्रेजुएशन है तो अभी आपके पास वक्त बहुत है, आप बाद में भी यदि क्लासेस होती हैं तो बाद में भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये चॉइस पूरी तरह से आपके ऊपर है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप ज्वाइन करेंगी तो आपको एडमिशन मिल सकता है और आपके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ उपयोगी तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बात जरूर है कि जो बहुत मेच्योर स्टूडेंट होते हैं वो उसका फायदा ज्यादा उठा लेते हैं और थोड़े से जो कम मेच्योर होते हैं डेफिनेटली अब उनके ऊपर है कि वो कितने मेच्योर हैं और कितना फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद है आशुतोष दीमरी का, ये देहरादून से हैं और इन्होंने, मैं आशुतोष इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कहा है कि उत्तराखंड से अगर किसी और स्टूडेंट ने एडमिशन कराया है तो मैं आपको आपका नंबर उन सभी को दे दूं। देहरादून से और भी बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन कराया है तो मैं आशुतोष दीमरी का आप सबको नंबर दे रहा हूं जो उत्तराखंड के हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9997973199। मैं फिर से रिपीट करता हूं 9997973199। आशुतोष जी आपके इस कदम के लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सोचा। इसके बाद है ये वीरेंद्र मौर्य का इलाहाबाद से। इन्होंने कहा है कि आईएएस के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो वीरेंद्र जी मैं अभी फिलहाल यही कह सकता हूं कि मेरी किताब आई है आप आईएएस कैसे बनेंगे, आप ये किताब मंगा लें, ये किताब पढ़ें, इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में मुझे पक्का विश्वास है कि काफी कुछ मदद मिलेगी। दोस्तों एक अच्छा मेल आया है नरेश मुनोत का विजाग से, जिन्होंने क्लास में एडमिशन भी लिया है। कल मैंने डिसीजन मेकिंग पर अपना ऑडियो गाइडेंस तैयार किया था, उन्होंने उसे सुना डिसीजन मेकिंग पर और सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया और इन्होंने लिखा है कि आई ट्राई टू सॉल्व ऑल द 6 क्वेश्चन ऑफ पेपर 2nd ऑफ 2013, आई सॉल्व 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस एक्यूरेटली बाय यूजिंग ट्रिक्स गाइडेड बाय यू। नाउ आई एम 200% श्योर दैट एनीबडी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस ट्रिक। कि मैंने 6 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की और मैं उसमें से 5 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एक्यूरेटली सही किए, जो ट्रिक आपने बताए थे बिल्कुल उसी को यूज करते हुए, और इसके बाद अब मैं 200% इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित हो गया हूं कि इस तरीके से 100% मार्क्स लाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, मैंने आपकी ये भावना लोगों तक भी पहुंचा दी है, आपके इस अनुभव को शेयर किया है ताकि दूसरों को भी लगे कि चीजें ठीक हैं और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये इसी के साथ नहीं है, ये सबके साथ है, ये कम्प्रिहेंशन के साथ भी है और ये लॉजिकल और जो दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के साथ भी है। ठीक है, उनके साथ थोड़ा सा कम होगा लेकिन है, क्योंकि वहां आप बैठ करके फार्मूला इस्तेमाल करके गणित सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो ब्रेन को ट्रेंड करने की बात है। और सच पूछे तो यही बेसिक क्लासेस हैं कि कैसे हम ब्रेन को अपने ट्रेंड कर लें कि रूट हमें पता लग जाए, बाकी चीजें हम फिर फटाफट करते जाएंगे। तो ये जो 15 दिन की क्लासेस हैं उसका पर्पज ही यही है कि इसके बारे में आपको ट्रेंड कर दिया जाए। जैसे अगर डिसीजन मेकिंग की बात मैं अपने क्लास में ही बताऊंगा तो डेफिनेटली एक उदाहरण देकर के मैंने समझाया है, मैं अलग अलग क्षेत्रों के और उदाहरण लेकर के आऊंगा और फिर उसमें जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, उन अल्टरनेटिव्स की एनालिसिस करूंगा। उस एनालिसिस से देखेंगे कि आपकी साइकोलॉजी कैसे मेल खा रही है या उसके विरोध में खड़ी है, तो आपका दिमाग एक तरह से रवा हो जाएगा, एक तरह से उसमें एक रिदम आ जाएगा और वो क्लिक करने लगेगा। बस यही, इसी को कहते हैं बेसिक प्रिपरेशन। इसके बाद दोस्तों अंतिम मेल है शिव पूजन गोस्वामी का। इन्होंने पूछा है कि मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं तो उसके फीस वगैरह के बारे में बताएं। देखिए शिव पूजन जी, कि आप ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं उसमें क्लासेज में चले जाइए, वहां आपको डिटेल मिल जाएगी क्लासेज के बारे में। दो तीन चीजें मैं बता दूं कि ये बेसिक्स यहां केवल पढ़ाई जाएंगी, जिसमें इंटरव्यू की तैयारी भी शामिल होगी और निबंध का लेखन भी शामिल होगा, प्री भी शामिल है, मेंस भी शामिल है। मतलब प्री मेंस इंटरव्यू के बेसिक्स बताई जाएंगी। ये 15 दिन की क्लास है, डेली 6 घंटे क्लास लगेंगी, यानी कि टोटल 90 आवर्स की क्लास होगी। 27 अक्टूबर से शुरू होगी क्लासेस, 10 नवंबर को क्लासेस खत्म हो जाएंगी। इसकी जो फीस है 2000 रूपये देकर के अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग फीस 11000 रूपये होंगी वो आपको जब आप क्लासेस अटेंड करने के लिए आएंगे उस समय होगा। अगर आप चाहेंगे तो आपके पास लॉजिंग और बोर्डिंग, खाने का और रहने का इंतजाम एकेडमी करा देगी। आप अगर अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से भी कर लें। उसका जो खर्चा हम समझते हैं कि 300 से 400 के बीच में, 350-400 के आसपास पर डे के हिसाब से आएगा। इसीलिए हमने जानबूझ करके को भी क्लासेज रखी हैं, ताकि स्टूडेंट को अनावश्यक रूप से यहां ज्यादा रुक करके उसके लिए खर्च ना करना पड़े। तो मित्रों ये शिव पूजन जी, इसके बारे में डिटेल है। और अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं क्लासेस के बारे में, तो मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं, आप इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें, वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। मोबाइल नंबर है 07697852440। मैं फिर से बताता हूं, 07697852440, इस पर आप बात कर सकते हैं। तो मित्रों इसी के साथ ही मैं आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। आज का पहला दिन है इस सप्ताह का, इसे पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ऊर्जावान बने रहिए और इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार।